पाठ 25 अध्याय 25। पिछले सप्ताह हमने याकूब के जन्म की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना की कहानी शुरू की जो पहला इजरायली बनेगा। आइए रुकें और इसे योजना में रखें और कुलपतियों की प्रगति को देखें। अब्राहम याकूब के दादा ने एक मूर्ति पूजक के रूप में जीवन शुरू किया। अब्राहम के जन्म के समय दुनिया में केवल एक ही प्रकार के लोग शामिल थे, मानव जाति। वंशावली और सामाजिक विभाजन के अलावा यहोवा की नजर में सभी मनुष्य लगभग एक जैसे थे। एक अपवाद यह है कि हाम की वंशावली नूह के तीन पुत्रों में से एक शापित वंश थी। अब्राहम के समय तक मानवता का कोई विभाजन नहीं था, कोई अलग अलग लोग नहीं थे।
एक बार जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना देश और अपने परिवार को छोड़ने के लिए बुलाया, तब से यह शुरू हुआ। दुनिया को लोगों के दो समूहों में दैवीय रूप से विभाजित करने की प्रक्रिया, उसके लोग और बाकी सभी हम जो नाम देते हैं परमेश्वर के लोग। जो नाम हम बाइबल में पाते हैं वह इब्रानी है। इसलिए जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और कनान देश में चला गया, तो घोषणा के द्वारा परमेश्वर ने मानव जाति को एक ओर इब्रानियों में विभाजित कर दिया और दूसरी ओर बाकी सभी को अब्राहम के निर्णय और परमेश्वर की घोषणा, अब्राहम को परमेश्वर की दृष्टि में अन्य सभी मनुष्यों से अलग बनाने में एकमात्र कारक थे। अब्राहम का पुत्र इसहाक इब्रानी लोगों के विकास में अगले चरण का प्रतिनिधित्व करता है। इसहाक पहलौठा इब्रानी था। विशुद्ध रूप से घोषणा के अनुसार अब्राहम एक इब्रानी था, लेकिन इसहाक जन्म से एक इब्रानी था। फिर भी तब भी परमेश्वर की घोषणा अभी भी शामिल थी, क्योंकि अब्राहम का एक और बेटा था इश्माएल, जिसे वह अपना पहला बेटा मानता था, और इसलिए वह उन वाचाओं को आगे बढ़ाएगा जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बनाई थी। दूसरे वचनों में, जहां तक अब्राहम का सवाल है, इश्माएल एक इब्रानी था, और सबसे सख्त अर्थ में इश्माएल एक इब्रानी था जब तक कि कुछ नहीं बदला। क्या इससे आपके दिमाग में तो री गड़बड़ी होती है?
आप देखिए, एक समय ऐसा आया जब यहोवा ने अब्राहम से कहा, इतनी जल्दी मत करो अब्राहम, जैसे मैंने तुम्हें तुम्हारे पिता और भाई से अलग कर दिया, वैसे ही मैं इश्माएल को उसके पिता और भाई से अलग करने जा रहा हूं। इश्माएल को विभाजित किया जाना था और अपने पिता अब्राहम और अपने भाई इसहाक से अलग हो जाने का परिणाम यह हुआ कि इश्माएल को इब्रानी नहीं रहना पड़ा, लेकिन इसहाक था। तो यहां $64,000 का प्रश्न है, यदि इश्माएल इब्रानियों की और इसहाक दोनों के इब्रानी पिता थे अब्राहम, आज केवल इसहाक को ही इब्रानी कैसे माना जाता है? इश्माएल इब्रानियों की एक और शाखा क्यों नहीं है? हम इश्माएल और उसके सभी वंशजों के बारे में क्यों नहीं सोचते? उन लोगों के बारे में हम अरबों के बजाय इब्रानियों के रूप में भी संदर्भित करते हैं। खैर, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित हो जाता है यहां, जिस पर प्रत्येक यहूदी और अन्य जाति को बारीकी से ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कृपया मुझे सब कुछ दे दो आपका ध्यान और इसे हमारे याददाश्त शक्ति के स्थायी भाग में डाल दें, जबकि वह जन्मसिद्ध अधिकार है वंशावली, आपकी शारीरिक रक्त रेखाएं आपकी शारीरिक पहचान स्थापित करती हैं। आपका मांस और रक्त की पहचान यह प्रभु का चुनाव और घोषणा है जो आपके आध्यात्मिकता की पहचान को स्थापित करती है। क्या आपकी भौतिक पहचान और आपकी आध्यात्मिक पहचान दो अलग अलग मामले नहीं है? तो इब्रानी वचन की शुरुआत साधारण भौतिक पहचान से कहीं अधिक को दर्शाते हुए हुई। इब्रानी ने भी एक आध्यात्मिक पहचान को परिभाषित किया। मैं इसे आपके लिए एक साथ रखना चाहता हूं। परमेश्वर की योजना के अनुसार इब्रानी का मतलब यही वचन था, किसी व्यक्ति के भौतिक और आध्यात्मिक गुणों के संयोजन का वर्णन किया गया है। इसके अलावा एक इब्रानी का जीवन शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से उन व्यवस्था को और प्रतिज्ञाओं के एक समूह के तहत संचालित होना था जो परमेश्वर ने पहले इब्रानी अब्राहम के साथ किए थे। एक इब्रानी का सांसारिक जीवन उसके आध्यात्मिक जीवन के इर्द गिर्द घूमना था। हम इन व्यवस्थाओं और वादों को अब्राहम वाचा कहते हैं, जो इब्रानी के इस सांसारिक जीवन को परिभाषित करते हैं और बाद में उन्हें विस्तारित किया गया और मूसा को दिया गया और अब उन्हें तोरह कहा जाता है। इसलिए
भले ही इसहाक शारीरिक रूप से इब्रानी होने के लिए सही स्तर का था, फिर भी उसे इब्रानी घोषित करने के लिए ईश्वर का एक कार्य, ईश्वर का चुनाव हुआ। इसके बारे में सोचें, इश्माएल शारीरिक रूप से भी इब्रानी होने के लिए उपयुक्त था, लेकिन परमेश्वर ने इश्माएल को इब्रानी होने के लिए आवश्यक आध्यात्मिक दर्जा नहीं दिया। इसलिए इसहाक के चुनाव और इश्माएल की अस्वीकृति के साथ हमारे सामने राह में एक बड़ा कांटा है। एक दिशा इब्रानियों की ओर ले जाती थी, दूसरी इब्रानियों से दूर।
जैसे ही हम उत्पत्ति 25 में इसहाक के जुड़वा बेटों याकूब और ऐसाओ के साथ व्यवहार करना शुरू करते हैं, हम इस प्रक्रिया और सिद्धांत को फिर से दोहराते हुए देखेंगे। अब्राहम को दी गई वाचा के अधिकारों के उत्तराधिकारी के रूप में किसे चुना जाएगा, यह मुद्दा इस मामले की जड़ है। दूसरे तरीके से कहें तो याकूब और एसाव के बीच परमेश्वर घोषित करेंगे कि उनका चुना हुआ इब्रानी है और दूसरा नहीं। सभी भौतिक नमूनों के अनुसार याकूब और एसाव दोनों अपने इब्रानी पिता इसहाक से पैदा हुए थे। जन्म से यदि कोई विशुद्ध रूप से शारीरिक परिभाषा के अनुसार जाता है तो ऐसा प्रतीत होगा कि दोनों इब्रानी थे और एक अर्थ में वे दोनों थे, लेकिन नहीं, ईश्वर फिर से घोषणा के द्वारा विभाजित करेगा।
आइए याद रखें कि जबकि हम इसहाक और इश्माएल के बीच कुछ शारीरिक और वंशावली अंतर देख सकते थे, आखिरकार उनकी अलग अलग राष्ट्रीयताओं की मांगें अलग अलग थीं और सौतेले भाई भी थे। याकूब पूरी तरह से ऐसाओ से अलग था क्योंकि निस्संदेह उनके माता और पिता एक ही थे। याकूब और ऐसाओ जुड़वाओं थे। शारीरिक वंशावली रूप से याकूब और ऐसाओ के बीच कोई अंतर नहीं था, उनका डीएनए लगभग समान था। तो ऐसा कैसे हुआ कि याकूब को इब्रानी चुना गया और ऐसाओ को नहीं? ये केवल घोषणा के द्वारा था। ईश्वर का संप्रभु निर्णय चुनाव वचन का यही अर्थ है। ईश्वर ने ऐसाओ के स्थान पर याकूब को चुना। याकूब एक इब्रानी होगा, ऐसाओ से इब्रानी कहलाने का उसका अधिकार छीन लिया गया था। याकूब और ऐसाओ के बीच एकमात्र अंतर आध्यात्मिक अंतर था और यह विशुद्ध रूप से यहोवा की घोषणा के द्वारा लाया गया था।
इसलिए इब्रानी क्या है, इसे बेहतर ढंग से परिभाषित करने में हमारी मदद करने के लिए हम कह सकते हैं कि इब्रानी वह है जिसे अब्राहम को दिए गए वाचा के वादों की पंक्ति में वंशज बनाया गया है, या अधिक बाइबल वचनावली में एक इब्रानी अब्राहम को दी गई वाचा के वादों का उत्तराधिकारी है। यदि कोई मनुष्य वाचा के वादों का उत्तराधिकारी है तो वह मनुष्य ईश्वर द्वारा अलग किए गए लोगों का हिस्सा है, और इस प्रकार अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा के अनुसार दुनिया दो समूहों में विभाजित हो गई, इब्री अन्य सभी मनुष्य। अब्राहम ने वाचा के वादे की पंक्ति स्थापित की, परमेश्वर की घोषणा पर अब्राहम के पिता और भाई को बाहर रखा गया। अब्राहम के बेटे इसहाक ने परमेश्वर की घोषणा पर वाचा के वादे को जारी रखा और अब्राहम के दूसरे बेटे इश्माएल को बाहर रखा गया। इसहाक का पुत्र याकूब वाचा की पंक्ति को जारी रखेगा वादा परमेश्वर की घोषणा पर, और इसहाक के दूसरे बेटे एसाव को बाहर रखा जाएगा।
लेकिन जैसा कि हम कुछ और अध्यायों में देखेंगे, याकूब से आगे याकूब के सभी वंशजों को इब्रानी कहा जाएगा। अब कोई बहिष्करण नहीं और परमेश्वर की घोषणा के द्वारा कोई और चुनाव नहीं होगा। याकूब की संतान से शुरू होकर अब एक व्यक्ति व्यवस्था द्वारा इब्रानी था। यदि कोई शारीरिक रूप से इब्रानी में पैदा हुआ था तो वह व्यक्ति इब्रानी था। अवधि, लेकिन इससे भी अधिक, यदि कोई व्यक्ति इब्रानी पैदा नहीं हुआ था, अर्थात वह एक अन्य जाति था, यदि वह अन्य जाति इब्रानी लोगों का हिस्सा बनना चाहता था तो कुछ नियमों के माध्यम से इसकी अनुमति दी गई थी, कुछ नियम जो यहोवा द्वारा निर्धारित किए गए थे।
क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? मैं निश्चित रूप से ऐसी आशा करता हूं, क्योंकि यह आप पर लागू होता है, मैं और इस गृह पर रहने वाले सभी लोग। मैं जो कुछ भी समझा रहा हूं वह सब एक बार के लिए नमूना तैयार कर देता है, परमेश्वर के लोगों का हिस्सा बन जाता है।
तो कैसे किसी को परमेश्वर के अलग अलग लोगों का हिस्सा कहा जा सकता है? इब्रानियों जो अंततः इजरायली कहलाए जाने लगे सड़क पर कई अनुक्रमिक कांटे के माध्यम से होता है।
इसकी शुरुआत अब्राहम कांटे, फिर इसहाक और फिर याकूब कांटे से हुई और यह लगभग 1800 वर्षों तक इसी प्रकार बना रहता है। याकूब के 18 शताब्दियों के बाद हम सरक में एक और कांटा खोजने जा रहे हैं, इसे नई वाचा कहा जाता है। और नई वाचा उस समय के बारे में पुराने नियम की भविष्यवाणी है जब इब्रानियों की ये भौतिक वाचाएं और व्यवस्था, जिन्हें तोरह कहा जाता है, आध्यात्मिक रूप से कुछ लोगों के दिलों पर लिखे जाएंगे। सभी मनुष्यों का हृदय नहीं, सिर्फ उनका जिन्हें परमेश्वर ने चुना और घोषित किया कि वे उसके हैं। और ये जिस तरह से होगा वह एक मसीहा के माध्यम से होगा। और सरक का यह नया कांटा हमें पूर्ण चक्र में लाता है। यह कांटा अब्राहम वाचा के उस वादे को साकार करता है कि सभी पृथ्वी के परिवार आप में आशीष देंगे। अब्राहम, सभी का मतलब अन्य जातियों से नहीं है और न ही यहूदियों से, सभी का मतलब यहूदियों से भी नहीं है और न ही अन्य जातियों से। इसमें फिर से ईश्वर का चुनाव और घोषणा शामिल है और इस सब की कुंजी मसीहा है।
तो इस कहानी का हम यहां उत्पत्ति 25 में विश्लेषण करने वाले हैं, एक महत्वपूर्ण विभाजन की कहानी। इसराइल के ईश्वर द्वारा चुनाव और पृथक्करण वह है जिसमें बहुत सारी अद्भुत बारीकियां हैं और जो बहुत सारा मसीहाई सिद्धांतों को स्थापित करता है। दुर्भाग्य से समय हमें केवल उनमें से कुछ का ही पता लगाने की अनुमति देता है। उत्पत्ति को पुनः पढ़ें, 25:19।
इसहाक की पत्नी रेबेका चिंतित है। उसका गर्भ बिल्कुल हिंसक उथल पुथल में है। वहां जो चल रहा है वह सामान्य नहीं है। हो सकता है कि ये उसके पहले बच्चे हों, लेकिन उसने निस्संदेह सैकड़ों गर्भधारण देखे और केवल कुछ ही जन्मों में सहायता नहीं की। यह महिलाओं ने जो किया उसका हिस्सा है। इसलिए वह आश्वासन के लिए और अपने डर को शांत करने के लिए यहोवा से प्रार्थना करती है। परमेश्वर उसे अपना उत्तर देते हैं। उसके भीतर दो राष्ट्र रहते हैं और वह जो महसूस कर रही है वह प्रभुत्व के लिए संघर्ष है। इससे भी अधिक वह रेबेका से कहता है कि जन्म नहर से बाहर निकलने वाले पहले बच्चे को पहले बच्चे के रूप में अधिकार और सम्मान नहीं दिया जाएगा। इब्रानी में बेखोर जैसा कि प्रथागत था, बल्कि यह दूसरा जन्म होगा। यह एक ऐसा विषय है जो बाइबल में चल रहा है। एक विषय जो भौतिक सांसारिक दृष्टि से जो दिखता है, उसे आध्यात्मिक स्वर्गीय दृष्टिकोण से जो वास्तव में है उसे अलग करता है। भौतिक दृष्टि से अब्राहम को यह प्रतीत हुआ कि इश्माएल उसकी रखेल हाजिरा का पुत्र, उसका पहला पुत्र था, प्रतिज्ञा का पुत्र। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से यह इसहाक ही था जो चमत्कारिक ढंग से सारा द्वारा पैदा हुआ था, जिसके पास सभी पहलौठे अधिकार थे और जो प्रतिज्ञा का सबसे महत्वपूर्ण पुत्र था।
यहां उत्पत्ति 25 में हमारे पास एक ऐसी ही घटना है। रेबेका के गर्भ में जुड़वां बच्चे हैं। नियम यह है कि जो सबसे पहले पैदा होता है वह पहला बच्चा होता है, बेखोर, और दूसरा जो पैदा होता है वह कमोबेश पहले के अधीन होता है। तथ्य यह है कि पहला बच्चा जुड़वां था, इसका कोई मतलब नहीं था। वे विरासत का बंटवारा नहीं करते। उनमें से प्रत्येक को पहलौठे विरासत का हिस्सा नहीं मिलता है। एक को चुना गया है और दूसरे को नहीं। और रेबेका के गर्भ में यह हिंसक संघर्ष आने वाले संघर्ष की भविष्यवाणी करता है कि कौन सा बच्चा दूसरे पर हावी होगा। इससे भी अधिक हम पाते हैं कि परमेश्वर ने परिणाम पूर्व निर्धारित कर दिया है। इस निर्णय में न तो इसहाक और न ही रेबेका शामिल है।
पद 23 में रेबेका से कहा गया है कि बड़ा छोटे की सेवा करेगा। दूसरे वचनों में शारीरिक रूप से पहले जन्मे बच्चे को बेखोर के सामान्य और प्रथागत अधिकार नहीं मिलेंगे। पहले जन्मे, इसके बजाय दूसरे को वह अधिकार दिया जाएगा। इस मामले का शाश्वत महत्व यह है कि भौतिक पहलौठा एसाव वाचा के वादों का उत्तराधिकारी नहीं बनने जा रहा है। इसके बजाय शारीरिक रूप से दूसरा जन्म लेने वाला याकूब उत्तराधिकारी बनने जा रहा है। याकूब आध्यात्मिक स्तर पर बेखोर है। वह ईश्वरीय घोषणा के आधार पर ज्येष्ठ पुत्र है।
सूचना: इसहाक का शारीरिक जेठा जो एसाव होगा, अब्राहम के शारीरिक जेठा इश्माएल के समानांतर है।
इसहाक का आध्यात्मिक पहला बच्चा जो याकूब होगा, इसहाक के समानांतर है, जो अब्राहम का आध्यात्मिक पहला बच्चा है और वाचा के वादों का भावी वाहक है। तो हमारे यहाँ द्वैत की वास्तविकता का यह चालू सिद्धांत और नमूना है। हर चीज में एक आध्यात्मिक वास्तविकता और एक भौतिक वास्तविकता होती है जो एक साथ मौजूद होती है।
लेकिन इतना भी निश्चित है, ये दो अलग राष्ट्र, एक याकूब और दूसरा एसाव, एक दूसरे के लिए शत्रुता रखेंगे। यह वाक्यांश के अर्थ का हिस्सा है, बड़े को छोटे की सेवा करनी चाहिए।
जुड़वां बच्चे पैदा होते हैं। जो पहले उत्पन्न हुआ वह एसाव था, वह लाल या सुर्ख रंग का था और बहुत बालों वाला था। आप जानते हैं, एक प्यारा सा छोटा सा फजी बॉल। यहां इब्रानी का कुछ ज्ञान काम आता है बालों वाले के लिए। इब्रानी वचन, जैसा कि इस पद में यहां इस्तेमाल किया गया है, सेयर है। यदि वह वचन आपके लिए खतरे की घंटी बजाता है तो ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हम बाद में उत्पत्ति में पता लगाएंगे कि एसाव याकूब से दूर चला गया और माउंट सेयर नामक जिले में अपना राष्ट्र स्थापित किया। यह एक वचन का खेल है। माउंट सेयर का नाम एसाव के बहुत सेयर, बालों वाले होने के कारण पड़ा।
तो माउंट सेयर, जिसका नाम एसाव की एक विशेषता के लिए रखा गया है, का शाब्दिक अर्थ है बालों वाला पर्वत या माउंट पर्वत।
हमें यह भी बताया गया है कि जन्म प्रक्रिया के दौरान याकूब ने एसाव की
एरी पकड़ रखी थी। विचार यह है कि याकूब एसाव को पहले पैदा होने से रोकने की कोशिश कर रहा था।
अब आगे क्या होगा यह समझाने में बेहतर मदद करें। हमें यहां यह समझना चाहिए कि रेबेका ने यह जानकारी अपने पास नहीं रखी होगी जो याहवेन ने उसे अपने जुड़वां बेटों की नियति के बारे में दी थी। यह उसके पति के प्रति विश्वासघाती और अपमानजनक होता। बल्कि उसने उसे जल्दबाजी में बताया होता कि परमेश्वर ने उसे क्या सूचित किया था, कि जुड़वां बच्चों में से जो भी पहले बाहर आया उसे बेखोर घोषित नहीं किया जाना चाहिए, फर्स्ट बोर्न, बल्कि यह दूसरा था जो परमेश्वर के सामने आया था। निर्देश दिया गया था कि उस पदनाम को रखा जाए। आखिरकार उस युग के एक परिवार में इससे अधिक महत्वपूर्ण कुछ नहीं था कि कबीले पर अधिकार के लिए पिता का उत्तराधिकारी कौन होगा। वह उत्तराधिकारी बेखोर था, पहला जन्मा। इससे भी अधिक आप निश्चिंत हो सकते हैं कि रेबेका ने अपने जुड़वां बेटों एसाव और याकूब को परमेश्वर के दृढ़ संकल्प के बारे में सूचित किया कि याकूब न कि एसाव बेखोर होगा। यह कितना क्रूर होता अगर उन्हें इस महत्वपूर्ण आदेश की सूचना देने के लिए उनके परिपक्व होने तक इंतजार किया जाता। एक ऐसा फरमान जिसके बारे में मां और पिता को इन बच्चों के जन्म से पहले ही पता था।
तो छोटे याकूब के बारे में पूरे परिवार की जागरूकता की इस समझ के साथ कि उसे बड़े एसाव से ऊपर जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, हमें यह देखना चाहिए कि आगे क्या होता है।
जैसे जैसे कहानी सामने आती है, हम पाते हैं कि जैसा कि परिवारों में आम है, माता पिता के अपने पसंदीदा होते हैं। इसहाक ने एसाव को प्राथमिकता दी। एसाव जाहिर तौर पर तेज तर्रार, बहादुर, धनुष चलाने में निपुण, काफी मर्दाना था। ऐसी चीजें जिनकी पिता आम तौर पर अपने बेटों में प्रशंसा करते हैं। याकूब शांत और आत्मनिरीक्षण करने वाला अधिक संवेदनशील था। ऐसी चीजें जो माएं आमतौर पर पसंद करती हैं। इश्माएल और इसहाक के साथ हमारी समानता पर एक बार फिर ध्यान दें। इश्माएल अब्राहम का पसंदीदा था, इसहाक अपनी मां का चहेता था। जब यहोवा ने अब्राहम से कहा कि उसे दूसरा जन्मे इसहाक को प्राप्त करना है, जो कि वर्तमान में इश्माएल द्वारा धारण किए गए पहले जन्मे स्थान को प्राप्त करेगा, तो अब्राहम ने परमेश्वर को पुकारा, ओ काश इश्माएल आपकी उपस्थिति में जीवित रह पाता। अब्राहम ने निश्चय किया कि वह इश्माएल को पहलौठे के रूप में चाहता है। इसहाक ने निश्चय किया कि वह एसाव को पहलौठे के रूप में चाहता है। दोनों को वह नहीं मिलेगा जो वे चाहते थे, और इसलिए हम देखते हैं कि एक दिन आता है जब एसाव शिकार से अभी अभी आया है, भूखा है, और देखता है कि याकूब ने दाल का एक बर्तन तैयार किया है, या अधिक शाब्दिक रूप से अनुवादित लाल स्टू। याकूब जाहिर तौर पर पहले जन्मे बच्चे के अधिकारों को खुद को सौंपे जाने को लेकर
कभी भी पूरी तरह से सहज नहीं होने के कारण उसने फैसला किया कि वह परमेश्वर की मदद करने जा रहा है, वह ऐसाओं को खुले तौर पर प्राप्त करने जा रहा है और अंत में याकूब को अपना पारंपरिक जन्मसिद्ध अधिकार बेच देगा। आवेगशील ऐसा याकूब के प्रस्ताव के जवाब में एक बयान देता है जो चूंकि मैं मरने वाला हूं से शुरू होता है। वह याकूब को अपना जन्मसिद्ध अधिकार भी दे सकता है और शपथ के साथ समझौते पर मुहर लगाता है। मैं मरने वाला हूं कथन शाब्दिक नहीं है, यह सिर्फ एक कहावत है, कुछ कौन परवाह करता है। निसंदेह चूंकि परमेश्वर ने बहुत पहले ही इस मुद्दे को सुलझा लिया था, वास्तव में ऐसा को बेचने का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं था क्योंकि यह पहले से ही याकूब का था और याकूब को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए विश्वासघात का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि प्रभु ने पहले ही उसे यह सौंप दिया था। लेकिन न तो याकूब और न ही ऐसाव के पास इसे तथ्य के रूप में स्वीकार करने का विश्वास था। यहां हमें जानकारी का एक छोटा सा अंश भी दिया गया है जो हमें आगे के अध्यायों में उपयोगी लगेगा। ऐसाव को एक उपनाम दिया गया है, एदोम। एदोम का अर्थ है लाल और यह न केवल उसके सुर्ख बालों वाले शरीर की विशेषताओं को दर्शाता है बल्कि स्टू पॉट पर हुई इस कुख्यात घटना को भी दर्शाता है जो अभी घटित हुई है। इसलिए भविष्य के संदर्भ के लिए याद रखें कि एदोम और ऐसाव एक ही हैं और इसलिए एदोम का भावी राष्ट्र जो बाइबल में इज़राइल के निरंतर शत्रु के रूप में प्रचलित है अंत समय में भी एक भूमिका निभाएगा। और जान लो कि एदोम के लोग एदोम वासी बस ऐसाव के वंशज हैं। अंत में पद 34 में हमें बताया गया है कि ऐसाव ने अपने जन्मसिद्ध अधिकार का तिरस्कार किया। ऐसाव की बाइबल में बहुत गंभीर निंदा की गई है। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि रेबेका ने ऐसाव को बताया था, जैसा कि उसने निस्संदेह याकूब को बताया था। जन्म के कालानुक्रमिक क्रम के बावजूद यह याकूब ही था जिसे पहले बच्चे का अधिकार मिलना था। ऐसाव के लिए यह कितनी दुखदायी बात है, यह जानते हुए कि उसके दृष्टिकोण से उसकी अपनी मां उससे कह रही थी बेहोर कि उसे पहले बच्चे के रूप में पहचाना नहीं जाएगा। इससे बेहतर और क्या महसूस हो सकता था कि उसकी मां याकूब का पक्ष ले रही थी। इससे ऐसाव के जीवन का अधिकांश भाग प्रभावित हुआ होगा। उसे कुछ हद तक करवा, अविश्वासी और निंदक बना रहा है। उनके पिता इसहाक गरीब आदमी नहीं थे। सच कहूं तो यह सोचने का कोई मतलब नहीं है कि ऐसाव को पहले बच्चे के सभी अधिकार और शक्तियां पाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने संभवतः अपने पहले जन्मे अधिकारों को खोने को एक अपरिहार्य हालांकि घोर अनुचित घटना के रूप में देखा और ऐसा व्यवहार किया जैसे कि इससे पहली बार में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले जन्मे बच्चे के पद को उसके लिए अस्वीकार करने से पहले एक तरह से अस्वीकार करना। दोस्तों, ये लोग जिनके बारे में हमने बाइबल में पढ़ा था वे बिल्कुल ऐसे ही लोग थे। उनमें भावनाएं थीं, उनकी इच्छाएं और आवश्यकताएं थीं, उनमें विचित्रताएं थीं, उनमें कमियां थीं, उनमें गर्व था, वे वास्तविक थे। जब हम परिस्थितियों को बेहतर ढंग से समझ लेते हैं तो खुद को उनमें ढालना ज्यादा कठिन नहीं होता, जूते ठीक है। आइए थोड़ा
बैकअप लें और इस घटना से जुड़े
कुछ परिस्थितियों पर नजर डालें जो इतनी स्पष्ट नहीं है, कम से कम अन्य जातियों के लिए इतना स्पष्ट नहीं है। सबसे पहले, क्या किसी को यह अजीब लगता है कि हमारे यहां एक पुरुष याकूब खाना पका रहा है? स्पष्ट रूप से शास्त्र कहते हैं कि याकूब ने स्टू पकाया था। अब खाना बनाना महिलाओं का काम था, खासकर जब वे डेरा डाले हुए थीं या गांवों में रह रही थीं। निश्चित रूप से जो पुरुष घर से दूर थे उन्होंने कुछ खाना बनाया, लेकिन यह पारंपरिक था और सामान्य परिस्थितियों में एक युवा व्यक्ति के लिए खाना बनाना शर्मनाक होता। तो क्या याकूब सिर्फ एक बहिन था? क्या उसकी मां के पक्षपात ने उसे मां का लड़का बना दिया था? मैं कहां जा रहा हूं वह यह है कि जब हम प्राचीन इब्रानी संस्कृति को समझते हैं जिसका अधिकांश भाग वैसे अधिक आधुनिक इब्रानी परंपराओं में चला गया है, जब हम बाइबल के पार चलते हैं जैसे दृश्य याकूब और ईसाव और स्टू, हम पहचान सकते हैं कि कुछ सामान्य से हटकर हो रहा है। यह सामान्य बात नहीं है कि याकूब इस समय कम से कम 15 साल की उम्र में खाना पकाने का काम कर रही होगी, यह अभी नहीं हुआ।
तो यहां क्या हो रहा है? खैर, इसका उत्तर उन खूबसूरत इब्रानी परंपराओं में से एक में छिपा हो सकता है जो आज हर चौकस यहूदी परिवार का हिस्सा है। यह एक परंपरा है जो अनादिकाल से चली आ रही है और इसे बैठे हुए शिव कहा जाता है। यह मृतकों के शोक मनाने के संस्कार का हिस्सा है, इसलिए इसका हमारी कहानी से क्या लेना देना है। प्राचीन इब्रानी संत इस बात पर लगभग एकमत हैं कि एसाव और याकूब के बीच जो चल रहा है उसका संदर्भ यह है कि परिवार में किसी की मृत्यु हो गई है और जो मर गया वह अब्राहम था।
दाल का स्टू या दाल का सूप शोक का भोजन कहा जाता है। दाल का सूप शोक की 7 दिनों की अवधि के दौरान खाया जाने वाला एक पारंपरिक भोजन है जिसे बैठे हुए शेव कहा जाता है। मैं 1 मिनट में इसे तो राव और समझाऊंगा।
तो इसके बारे में सोचें, पवित्र ग्रंथ में इसके लाल स्टू होने और फिर पद 34 में इसे दाल के रूप में पहचानने का क्या मतलब है? यह संदर्भ अर्थ में कुछ भी कैसे जोड़ता है? इससे क्या फर्क पड़ता है कि सूप दाल का था? कोई भी अच्छा यहूदी जानता है कि यह शोक की अवधि का संकेत है। लेकिन इस बात के और भी सबूत हैं कि जो लोग निकटतम परिवार के सदस्य हैं उन्हें उस 7 दिन की अवधि के दौरान खाना नहीं बनाना है। परिवार के अन्य सदस्यों या दोस्तों को उन 7 दिनों के लिए भोजन उपलब्ध कराना होगा, या पहले से तैयार भोजन परिवार के सदस्य की मृत्यु से पहले पकाया और संरक्षित खाया जा सकता है। और तत्काल परिवार को बनाने वाले की परिभाषा महत्वपूर्ण है। किसी के पिता और माता, बहन और भाई, बेटा और बेटी या जीवन साथी परिवार का तत्काल सदस्य है। शोक संस्कार के इस भाग के प्रयोजन के लिए पोते पोतियां तत्काल परिवार के सदस्य नहीं है। रेबेका, जो आम तौर पर परिवार के लिए खाना बनाती थी, को खाना पकाने से प्रतिबंधित कर दिया गया होता। अब्राहम के पोते याकूब को खाना पकाने की अनुमति दी गई थी, वह तत्काल परिवार के दायरे से बाहर था, शायद इसीलिए वह शोक का भोजन दाल का स्टू पका रहा था। दाल क्यों? दरअसल हम यह भी पाते हैं कि अंडे को शोक के लिए उपयुक्त भोजन भी माना जाता है। इन दोनों खाद्य पदार्थों दाल और अंडे में जो समानता है वह यह है कि ये गोल हैं और गोलाई जीवन की गोलाकार प्रकृति को दर्शाती है। शून्य से गर्भ धारण करने और शून्य में लौटने का चक्र शारीरिक रूप से कहें तो निश्चित रूप से, और यह एक पीढ़ी के खत्म होने और अगली पीढ़ी के अंतहीन नमूना में शुरू होने की भी बात करता है।
यह बाइबल है और स्वाभाविक रूप से इब्रानी विचार जो इससे आता है, जो हमें दिखाता है कि इतिहास गोलाकार है। वह इतिहास खुद को दोहराता है। हम बार बार उन्हीं नमूना को देखते हैं जिन्हें ईश्वर ने ब्रह्मांड के ताने बाने में दोहराया, स्थापित किया और बुना। और स्वाभाविक रूप से यह धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद है और इसका गौरवशाली पुत्र डार्विन विकासवाद है, जो कहता है नहीं नहीं, इतिहास एक सीधी रेखा है। यह अतीत में किसी अज्ञात स्थान से शुरू होता है और बेतरतीब ढंग से किसी अज्ञात भविष्य की ओर बढ़ता है। हर दिन का हर पल नया है और इसकी तुलना करने के लिए अतीत में कुछ भी नहीं है। कोई नमूना नहीं है। नैतिकता का विकास होता है, पुराना अप्रचलित हो जाता है और नया प्रमुख हो जाता है। पुराने को किसी ऐसी चीज से बदल दिया जाता है जो पिछले नमूना को नष्ट कर देती है और एक नया स्थापित करती है। दाल और अंडे का चित्रण कुछ और ही कहता है और मुझे यह परंपरा बहुत पसंद है। हम मनुष्यों को ईश्वर के आध्यात्मिक सिद्धांतों के भौतिक चित्रण की आवश्यकता है। जब हम उन्हें एक तरफ रख देते हैं या सोचते हैं कि अब हमें उनकी आवश्यकता नहीं है, तो परिणाम धोखा और त्रुटि है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम अभी अभी मरा था और याकूब शोक का भोजन तैयार कर रहा था जब एसाव शिकार से आया। उसे इस बात से कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि उसके दादा अब्राहम की मृत्यु हो गई थी। बाहर जाने से पहले उसे अच्छी तरह पता था। परिवार के साथ रहने और विशेष रूप से अपने पिता के लिए शोक संतप्त और सांत्वना देने वाला बनने का अपना कर्तव्य निभाने के बजाय उसने वही किया जो उसे करना अच्छा लगता था, शिकार का खेल। ये कोई संयोग नहीं है
कि जब याकूब कुछ मसूर की दाल के लिए एसाव के जन्मसिद्ध अधिकार का व्यापार करने की पेशकश के साथ एसाव के पास पहुंचा, एसाव ने रुग्ण वचनों के साथ जवाब दिया, देखो मैं मरने वाला हूं, बेखोर के मेरे अधिकारों का क्या उपयोग। यह कम से कम कुछ हद तक बेहद अनुचित समय पर किया गया कब्रिस्तान हास्य था। आइए याद करें, इस समय एसाव मध्यम आयु वर्ग का किशोर था, एक गुस्से में अधेड़ उम्र का किशोर, इसलिए ये उसके द्वारा बोले गए परिपक्व या सुविचारित वचन नहीं थे। वे उतावले और मूर्ख थे, फिर भी यह हमें दिखाता है कि उसने बेखोर ज्येष्ठ पुत्र के रूप में अपनी उत्कृष्ट स्थिति के बारे में क्या सोचा था, और उत्तर ज्यादा नहीं है। देखिए, जब हम पहले बच्चे के अधिकारों के बारे में बात करते हैं, जिसमें परिवार की संपत्ति का दोगुना हिस्सा प्राप्त करना और कबीले पर शासन करने का अधिकार शामिल है, तो साथ साथ चलने वाली जिम्मेदारियों को भूलना आसान है। उन अधिकारों के साथ कोई भी सीधी सोच वाला माता पिता जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी कार्यकारी या प्रबंधक या नेता जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। हां, ऐसे पुरस्कार और सम्मान हैं जो पद के साथ आते हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य भी हैं जिन्हें अगर ठीक से निभाया जाए तो वे किसी भी पुरस्कार और व्यक्तिगत लाभ से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसा अपने दादा अब्राहम को अच्छी तरह से जानता था, और वह उस महान और भयानक बोझ से भी उतना ही परिचित था। निःसंदेह ऐसा अपने पिता इसहाक को अच्छी तरह से जानता था, और वह परमेश्वर की वाचाओं के प्रति जिम्मेदारी के भारी बोझ को भी जानता था। ऐसा इसका कोई भाग नहीं चाहता था। बिना किसी संदेह के कई किशोरों की तरह ऐसा सभी मजेदार चीजें चाहता था। लोगों को बताता कि क्या करना है, लेकिन कोई उसे नहीं बताता कि क्या करना है। उसे मेज पर सबसे अच्छी जगह रखने, अमीर होने वगैरह का विचार पसंद था, लेकिन वह इसके साथ आने वाली जिम्मेदारियां और कर्तव्य नहीं चाहता था। महान आशीराशी कहते हैं कि इस घटना का एक और सबक यह है कि एक धर्मी व्यक्ति सामान्य रूप से जीवन को कैसे देखता है, बनाम एक दुष्ट व्यक्ति ऐसा ही कैसे करता है। याकूब धर्मी व्यक्ति का जीवन के प्रति दृष्टिकोण है, मैं यहां क्या हासिल करने आया हूं, मेरे कर्तव्य और मेरे लक्ष्य क्या हैं। दुष्ट का दृष्टिकोण ऐसाओं का विचार है, खाओ पियो और आनंद मनाओ क्योंकि कल हम मर सकते हैं। अपने दादा की मृत्यु पर विचार करने के बाद ऐसा सोच रहा था कि जब उसके पिता इसहाक की मृत्यु हो गई तो वह अपने पहले बेटे और परिवार के कुल पिता के सभी कर्तव्यों से बंधा नहीं रहना चाहता था। बिल्कुल नहीं, मैं बस जीवन का आनंद लेना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्राप्त करना चाहता हूं। जिम्मेदारी बेकार लोगों की है। याकूब ने एसाव को चुनौती देने के लिए उसी क्षण को चुना, क्योंकि कोई भी दूसरे व्यक्ति को उसे बेहतर नहीं जानता, शायद जितना एक झुरवा दूसरे को जानता है। याकूब जानता था कि एसाव अपना जन्मसिद्ध अधिकार और इसके साथ आने वाले सभी बोझिल कर्तव्यों को छोड़ने के लिए तैयार था, और उसके दादा की मृत्यु और जब हमारे किसी करीबी की मृत्यु हो जाती है तो हम सभी अपने जीवन के बारे में जो सोचते हैं उसने उसे किनारे कर दिया। दैवीय रूप से निर्धारित कर्तव्य जिनके बारे में इसहाक ने बात की होगी और अब्राहम ने भी की होगी,
लगातार इस बारे में बात की है कि क्या ऐसा कुछ नहीं चाहता था। वाचा की प्रतिज्ञा की पंक्ति को आगे बढ़ाने का महत्व इतना महान था कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं रखा जा सकता था।
पद 27 में हमें प्रत्येक युवक के चरित्र के बारे में सूचित करने के लिए बहुत कुछ शामिल था। इसमें कहा गया है कि ऐसा एक शिकारी बन गया, जबकि याकूब एक शांत व्यक्ति था जो तंबुओं में रहता था।
मैं इसके साथ ज्यादा समय नहीं बिताऊंगा, लेकिन कृपया ध्यान दें, पवित्र धर्म ग्रंथों में केवल दो स्थानों पर एक आदमी को शिकारी कहा जाता है, यानी इब्रानी में उसे जेनलपक कहा जाता है। अपने चरित्र की पहचान करने के साधन के रूप में शिकारी के रूप में लेबल किया जाने वाला पहला व्यक्ति निम्रोद था। एकमात्र अन्य एसाव है, जैसा कि बाइबल में इसका उपयोग किया गया है। जेलपक एक नकारात्मक वचन है, इसका वास्तव में अर्थ पत्थर ठंडा हत्यारा है। एक आदमी जो हत्या के शौक के लिए जानवरों को मारता है और एक आदमी को मारने के लिए उसके पास जरा भी विवेक नहीं है। दूसरी ओर याकूब को कुछ बाइबिलों में शांत व्यक्ति कहा गया है, दूसरों में एक सादा आदमी और एक शांतिपूर्ण आदमी, फिर भी अन्य। जिस इब्रानी वचन का अनुवाद किया जा रहा है वह झंगू है, जबकि शांतिपूर्ण या सादा आवश्यक रूप से गलत नहीं है। यह मुद्दा चूक गया, याकूब और ऐसाव की तुलना की जा रही है, उनकी तुलना विपरीत से की जा रही है। झंगू का अर्थ है दोष रहित होना या दोष न होना। इसका तात्पर्य यह है कि यह दोष रहितता ईश्वर के समक्ष दोष रहित होना है। यह धर्मी कहने का एक और तरीका है। यहां विरोधाभास उस व्यक्ति के बारे में है जो हत्या करना पसंद करता है, बनाम उस व्यक्ति के बारे में जो जीवन से प्यार करता है। वह जो लक्ष्यहीन होकर घूमता है, बनाम वह जो पास रहता है। वह जो झुंड का वध करता है, बनाम वह जो झुंड की चरवाही करता है।
अंतिम पद इस पूरे प्रकरण का सार प्रस्तुत करती है और वास्तव में किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। यह कहता है, इस प्रकार ऐसाव ने दिखाया कि वह जन्मसिद्ध अधिकार को कितना कम महत्व देता है।